نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ طہٰ جو مکی سورت ہے اس کا آغاز کریں گے. سورہ طہٰ کے جو زمانہ نزول بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تقریباً 6 نبوی تھی، 5 یا 6، یعنی مڈ کا جو ٹائم تھا مکی دور کا، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی. اور اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو مسلمانوں کے اوپر مشکلات چل رہی تھیں، جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، جیسے ان کے اوپر سخت حالات تھے، تو اس کی ایک ریفلیکشن ہمیں ملتی ہے سورت میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان حالات میں ان مومنوں کو تسلی دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی جاتی ہے. یہ سورت تقریباً اس وقت جس وقت مسلمان پہلی ہجرت حبشہ کر رہے تھے اس وقت نازل ہوئی. اور اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی مشکل حالات ہی ہوں گے جو یہ ضرورت ہوئی کہ لوگ کہیں دوسری جگہ چلے جائیں. یہ یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں کسی دوسری جگہ موو ہونا کوئی نارم نہیں تھا جیسے آج ہے. جیسے آج ہم لوگ اٹھتے ہیں اپنے ملکوں سے کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، وہیں جا کے بس جاتے ہیں، ایسا اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں لوگ جہاں رہتے تھے وہیں ان کی نسلیں پیدا ہوتی تھیں اور وہیں مر کھپ جاتے تھے، لیکن کہیں جاتے نہیں تھے. قبائلی زندگی تھی، اپنے قبائل میں ہی رہنے کو پریفر کرتے تھے. لیکن جس وقت اس قدر سویر پنشمنٹس دی جانے لگی مسلمانوں کو، کہ جن کو آپ اگر پڑھتے بھی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کیسے وہ لوگ ان چیزوں کو برداشت کرتے تھے. اتنا ٹارچر، اس قدر اذیت، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کہیں کوئی عدالت نہیں تھی، کہیں کوئی پولیس نہیں تھی، کہیں کوئی ہیومن رائٹس نہیں تھے، کہیں کوئی میڈیا نہیں تھا جو کہ یہ خبریں دیتا. ایسے حالات میں ایک چیز تھی جو صرف تسلی دیتی تھی، ایک چیز تھی جو دل کو باندھتی تھی، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ کی وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی وہ حالات، ظاہر ہے انسان تھے تو وہ حالات بڑے گراں گزرتے تھے، بہت غمزدہ رہتے تھے. دن بھر تبلیغ کرتے تھے، راتوں کو بے چین ہو کے دعائیں کرتے تھے، اور آئے دن ظاہر ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں، فلاں کو شہید کر دیا گیا، فلاں کو کوئلوں پہ لٹا دیا گیا، فلاں کو گھسیٹا گیا، فلاں کے اوپر یہ ٹارچر ہو گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے حالات کے اندر انسان پہ کیا گزرتی. آج ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر آج ہی کوئی خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ جی کسی جگہ پہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں اسلامو فوبیا ایسا پھیل گیا ہے، فلانی جگہ پہ حجاب کھینچ لیے، فلانی جگہ پہ کسی کی گاڑی کو آگ لگا دی، فلان جگہ کے اوپر لوگوں کو مارا پیٹا گیا، لوگ کیسے ڈر جاتے ہیں، اپنا دین ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اندازہ کیجیے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان تھے، اور کیسے وہ لوگ جمے رہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا تھا نا وہ اس سے ہٹتا نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اس کی وجہ سے، مگر وہ ہٹتے نہیں تھے. تو اس سورت کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ مصیبت نہیں ہے. اور اس سورت کے اندر آپ دیکھیں گے 1 سے 8 تک آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے نبی کو، اور اس کے بعد بے شمار آیات موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کلیم بھی بتایا گیا. سورہ کلیم اس لیے کیونکہ اس میں کلیم اللہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، लिहाजा आप देखेंगे आयत नंबर 9 से तकरीबन 98 तक आप ये सारी आयात देखेंगे जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की वाकये को हाईलाइट किया गया है। और 135 आयात हैं, तो 99 से 135 तक यानी एंड तक आखरत के बारे में, नमाज के बारे में, सबर, जकात, ये सब चीजें, और मुसलमानों को तसल्ली और ईमान वालों के लिए जो अल्लाह ताला की मोहब्बत है उसको बताया गया। तो इस तरह से हम तीन पार्ट्स में इस सूरत को डिवाइड कर सकते हैं। कहा जाता है कि सूरह मरियम के बाद ही ये सूरह तौहा नाजिल हुई थी, और आप देखेंगे कि मजामीन में भी मुनासिबत आपको नजर आएगी। ये सूरत का नंबर बताया जाता है, तरतीब नजूली के एतबार से 54 नंबर की सूरत है, और यही वो सूरत है जो हजरत उमर के कबूले इस्लाम का एक जरिया बनी थी। इमाम इब्ने इसहाक लिखते हैं कि मुझ तक जो खबर पहुंची है इसके मुताबिक हजरत उमर के इस्लाम लाने का वाकया इस तरह से है कि उमर की बहन फातिमा बिनते खत्ताब और उनके बहनोई सईद बिन जैद के उनके निकाह में थी, वो इस्लाम ला चुकी थी और इनके शौहर भी इस्लाम ला चुके थे, और वो दोनों अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे, और बनू आदि के एक और शख्स नुआइन बिन अब्दुल्ला भी मुसलमान हो चुके थे, और वो भी अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपा के रखे हुए थे। तो हजरत खब्बाब बिन अरत जो थे वो कुरान मजीद पढ़ाने के लिए हजरत फातिमा के घर जाया करते थे। एक दिन हजरत उमर जो है तलवार लिए जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को कत्ल करने का इरादा घर से लेके निकले थे कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा, खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए। तो हजरत उमर को ये बताया गया कि वो सब सफा पहाड़ी के पास एक घर में है, और उस वक्त मुसलमानों की तादाद, मर्दों की तादाद 40 के करीब थी, कहते हैं 39 थी लेकिन मोर और लेस इतनी थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके चचा हजरत हमजा भी थे, अबू बकर सिद्दीक, अली और दीगर मुसलमान थे। अब जब हजरत उमर जा रहे थे तो नाइम बिन अब्दुल्ला रास्ते में मिले और पूछा है उमर तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद का कत्ल करने का इरादा रखता हूँ जो दीन बदलने वाले हैं, जिन्होंने कुरैश में फूट डाल दी और इनके नौजवान और कम अक्ल लड़कों को बहकाया है और हमारे दीन की मजम्मत की है और हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है, सो मैं उनको कत्ल करूंगा। तो नाइम ने कहा है उमर तुम धोखे में मुब्तला हो, क्या तुम समझते हो बनू अब्दे मनाफ तुमको जमीन पे चलने के लिए छोड़ देंगे इसके बाद कि तुम उनको कत्ल करके आ जाओ, तो तुम पहले अपने घर की क्यों नहीं खबर लेते। हमने कहा मेरे घर को क्या हुआ है, नाइम ने कहा तुम्हारे बहनोई और तुम्हारे चचाजाद सईद बिन जैद जो बहनोई भी हैं और चचाजाद भी कजन भी लगते थे और तुम्हारी बहन जो है दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तो पहले उनसे तो जाके निपटो। उमर अपनी बहन और बहनोई का कसद करके वापस हुए, उस वक्त उनके पास खब्बाब बिन अरद थे और उनके पास एक सहीफा था जिसमें लिखा था तौहा और ये आयात, तो वो उनको यही पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने हजरत उमर की आहट सुनी तो हजरत खब्बाब तो अंदर जाके छुप गए और फातिमा बिनते खत्ताब ने वो सहीफा भी छुपा दिया। अब हजरत उमर ने थोड़ी कुरान की आवाज सुन ली थी, जब घर में दाखिल हुए पूछा ये कैसी आवाज है, उन दोनों ने कहा हम तो कोई का आवाज नहीं सुनी हमने। तो उमर ने कहा कि क्यों नहीं, खुदा की कसम मुझे इत्तला मिल चुकी है कि तुम दोनों मोहम्मद की दीन की पैरवी कर रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उन्होंने अपने बहनोई की एक थप्पड़ मारा, इतनी पिटाई की, और उसके बाद उनकी बहन अपने शोहर को बचाने के लिए खड़ी हुई तो उनको भी मारा, उनका सर फट गया, चेहरे से खून बहना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद बहन ने कहा कि हाँ हम मुसलमान हो चुके हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं, अब तुमने जो करना है करो। तो जब अपनी बहन का खून बहते हुए देखा तो फिर दिल नरम हो गया और बड़ी नदामत हुई कि मैंने क्यों इसको मार दिया। तो फिर रुक गए और फिर पूछा अपनी बहन से कि अच्छा मुझे दिखाओ तो सही कि तुम क्या पढ़ क्या रहे थे, मैं भी देखूँ ना वो क्या पैगाम लेकर आए, और पढ़े लिखे आदमी थे। तो इनकी बहन ने कहा कि मुझे लगता है कि आप उसकी मतलब कुछ उसको तौहीन उसकी कर देंगे उस सहीफे की। तो फरमाया मुझसे ना डरो, अपनी बुतों की कसम खा के कहा कि मैं वो वैसे ही तुम्हें वापस कर दूंगा जैसे मैं तुमसे लूंगा। इदारे कुतनी में ये रिवायत है। अब जिस वक्त उन्होंने ये कहा तो बहन को उम्मीद हुई कि शायद वो इस्लाम ले आए, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि आप नापाक हैं, मुशरिक हैं, और कुरान मजीद को पाक शख्स के सिवा कोई नहीं छू सकता, तो आप गुसल करें। तो उन्होंने गुसल किया और बहन ने फिर उनको सहीफा दिया जिसमें लिखा था तौहा। जब उन्होंने ये इब्तदाई आयात पढ़ी ना, तो फिर कहते हैं ये कितना हसीन कलाम है, कितना आजीम कलाम है। जब हजरत खब्बाब ने हजरत उमर का ये कॉल सुना, बात सुनी, तो जहां पे छुपे हुए थे वहां से बाहर आ गए। उन्होंने कहा है, उमर अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ तुम्हारे हक में खास तौर पे कबूल कर लिया, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था कि वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस्लाम के अबुल हकम बिन हशाम से तायीद फरमा या उमर बिन खत्ताब से। अबुल हकम उनकी उसकी कुनियत थी अबू जहल की। तो उस वक्त हजरत उमर ने कहा कि खब्बाब मुझे ले चलो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकि मैं इस्लाम ले आऊं। तो वो उनको लेकर गए थे और वहां पर ये इस्लाम ले आए थे। तो ये हमें रिवायत मिलती है, और ये भी पता चलता है कि ये आयत नंबर जो 14 है ना, इसके ऊपर आके उन्होंने फरमाया कि ये जिसका भी कलाम है तो वाकई उसके सिवा कोई इस लायक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, ये जिसका भी कलाम है। यानी इतने ज्यादा उनके दिल पर ये आयात असर की थी कि फौरन यानी उसके बाद इस्लाम लाने के ऊपर आमादा हो गए, दिल पिघल गया। तो हमें ये सोचना चाहिए जब हम ऐसी आयात पढ़ें, तो हमेशा ये जहन में लाना चाहिए कि क्या बात है इन आयात के अंदर, क्या हमारे भी दिल पिघलते हैं इन आयात के साथ, क्या हमारे दिलों पर भी ये आयात ऐसे असर करती हैं। ठीक है। दूसरी एक बात बहुत अहम है कि इस सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम का इतना ज्यादा जिक्र लंबा, जो मैंने आपको बताया तकरीबन यानी 90 आयात तकरीबन उनके ऊपर है, तो क्या वजह है कि उनका जिक्र इतना ज्यादा है। असल में मूसा अलैहिस्सलाम भी एक बहुत जालिम जाबिर बादशाह के सामने खड़े हुए थे और उसका मुकाबला किया था, और उसका सामना करना फिरौन का ना, और उसके आगे कलमा हक कहना, अपनी मौत को दावत देना था। वो इतना जालिम था, आप इससे अंदाजा कीजिए ना कि जिसको छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी तरस ना आए, जिसको मासूम जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके ऊपर भी तरस ना आए, तो मुझे बताएं कि फिर ऐसा इंसान क्या इंसान होगा। तो ऐसे आदमी के आगे कलमा हक बोलना बहुत बड़ी बात थी, और उस वक्त के अंदर जब बनी इसराइल तो बिल्कुल ही पिसे हुए थे, वो तो कुछ आवाज ही नहीं उठा सकते थे, अब उनके उनकी सपोर्ट तो समझ लें कोई मतलब नहीं थी, कुछ भी उनकी ऐसी नहीं थी कि कोई बैकिंग हो, कोई सपोर्ट हो, कोई इस तरह की चीज हो। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ही खड़े हैं, और कैसे इतना जालिम बादशाह और सब उसके साइड पे हैं, तो उसमें उन्होंने कैसे मुकाबला किया। ये एक तरह से एक तसल्ली भी थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो भी तो पिस रहे थे ना, तो उनको बताया गया कि कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको सोचें इस चीज को कि हालात जब दीन की वजह से बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना, तो बास दफा लोगों के दिल में ख्याल आने लगता है कि पता नहीं हम हक पे भी हैं या नहीं। अगर हम वाकई हक पे हैं तो फिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, फिर अगर हम सही हैं तो हमारे साथ तो अल्लाह की मदद होनी चाहिए, इनका खात्मा हो जाना चाहिए, तबाह हो जाने चाहिए, और हमें तो स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम तो पिसने लगे हुए, तो पता नहीं हम सही भी हैं या नहीं। तो उनको बताया गया कि नहीं, आपसे पहले भी कोई ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल हालात सहे हैं, बहुत मुश्किल हालात, ये नई बात नहीं है, बल्कि इंसान को तो इस चीज के ऊपर थोड़ा परेशान हो जाना चाहिए कि अगर वो हक पर है और उसकी कोई मुखालफत ही नहीं, वो हक की दावत देने वाला है, वो हक बात करने वाला है, और कोई भी कुछ नहीं कहता, लोग उसको हार पहना रहे हैं, तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। इसलिए कि ऐसा नहीं होता, तमाम पैगंबरों की मुखालफत हुई है। तो उस वक्त में बनी इसराइल ने भी जुल्मो सितम सहा, वो तो उस वक्त की मुवाहिद कौम थी, तौहीद वाले थे, उन्होंने भी जुल्म सहे थे। तो अगर मुसलमानों के ऊपर मक्का के अंदर जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो पहले भी लोगों ने जुल्म सहे, और इस सूरत में भी जैसे आप सूरह मरियम में देखते थे ना अल्लाह ताला का नाम और रहमान बार बार आया, तो इसी तरह इस सूरत में भी आप देखेंगे। और ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत और शफकत ही है कि वो ऐसा कुरान नाजिल करे कि जो दिलों को तसल्ली दे दे, तशफी दे दे। और ये पता चलता है मुश्किलात आएंगी इस रास्ते में, ये रास्ता आसान नहीं है जो दीन का रास्ता है। हम तो अपने ऊपर देखें तो हमें तो जरा सा कांटा भी चुभ जाता है ना तो हमारी चीखें निकलने लगती हैं। अल्लाह रहम कर दे और हमें माफ कर दे और अल्लाह हमें कभी ना आजमाइश में डालना, लेकिन हम तो कोई तरह की भी आजमाइश सहने के काबिल नहीं कि हम दीन के पर जरा सी दीन की वजह से किसी की जॉब ही चली जाती है, या किसी को जरा सा भी कोई ताना दे देता है, या कोई किसी से जरा भी बातचीत बंद कर देता है, या उसके साथ दोस्ती खत्म कर देता है, तो हमारे ऊपर तो कोई पहाड़ बन के गिर जाता है और हम फौरन दीन को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुछ अंदाजा करते हैं आप इन लोगों को, इन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये मुश्किलात आएंगी इस रास्ते में, मगर इनको कभी अजाब ना समझना, इनको कभी बदबख्ती ना समझना कि हाय मेरे ऊपर मुसीबत आए, ये इस दीन की वजह से मैं ऐसी वो हो गई। नहीं, ये तो सरासर रहमत है। ठीक है, तो पूरी सूरत में आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बात की है, लेकिन काफिरों के साथ डायरेक्टली बात नहीं की, क्योंकि जिससे इंसान नाराज होता है, देखिए उससे भी आप सामने बात नहीं करना चाहते। आप घर में कभी लड़ाई हो तो बच्चों को कहते हैं कि बाप को बता दो ये चीज, चाहे वो सामने ही बैठा हो, लेकिन इंसान नहीं बात करना चाहता। तो अल्लाह ताला की इतनी नाराजगी काफिरों से है कि उनके साथ डायरेक्टली बात नहीं की अल्लाह ताला ने, और ये अल्लाह ताला का गुस्सा उनके ऊपर जाहिर होता है इससे। तो देखते हैं आज सूरह ताहा, ठीक है, देखते हैं लफ्जी तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहा, मा अनजलना, नहीं नाजिल किया हमने, अलैका, आप पर, अल कुरान, कुरान को, लितशका, शकावत के लिए, शकी और सईद, ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, शकावत क्या होती है, बदबख्ती, मुश्किल में हो जाना, तकलीफ का माना यहाँ पे है कि आप तकलीफ में मुब्तला हो जाए। इल्ला तज़किरतन, मगर एक नसीहत है, लिमन यख्शा, उसके लिए जो डरता हो, तंजीलन, नाजिल करता है, मिमन, उसकी तरफ से जो, मिन से मन जो, उसकी तरफ से जो, खलक अल अर्द वस्समावात, पैदा, जिसने पैदा किया जमीन को और आसमानों को, अल उला, उला बुलंद, जैसे आली, उलूव, और रहमान अल अर्श, रहमान अर्श पर, इस्तवा, मुस्तवी, लहू मा फिस समावाती व मा फिस अर्द, व मा बैना, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, व मा तहत सरा, और तहत नीचे है जो, असरा, सरा कहते हैं जमीन की गीली गीली मिट्टी को, तो जमीन की मिट्टी के, वह इन तजहर, और अगर तजहर, जहरी आपको पता है ना बुलंद आवाज में, तो यानी बुलंद आवाज से पुकारो, बिलकुल बात को, फइन्नहु, तो बेशक वो, यालमु, जानता है, असिर, राज को, व अख्फा, और जो खुफिया बात, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह नहीं कोई इलाह मगर वही, लहुल अस्मा उल हुस्ना, उसी के लिए अच्छे अच्छे नाम है, वहल अता का हदीस मूसा, और क्या आई है तेरे पास हदीस, बात मूसा अलैहि सलाम की, इज रोआ नारन, जब उसने देखा आग को, फकाला, तो कहा, ली अहली, अपने घर वालों से, उमकुसु, मक्कस कहते हैं ठहरने को, इन्नी ठहरो, इन्नी बेशक मैं, आनस्तु, मैंने, मानूस होने को कहते हैं ना कि मैंने पाई है, मैं मानूस हुआ हूं एक आग से, नार, आग, लाअल्ली, शायद कि मैं, आती कुम, लाऊं तुम्हारे पास, मिनहा, उसमें से, भी कौबसिन, कौबस कहते हैं किसी चीज का तो थोड़ा हिस्सा, तो यहाँ पे आग का थोड़ा सा हिस्सा मतलब है शोला, औ अजीदु, या मैं पाऊं, अल नार, आग पर, हुदा, कोई रहनुमाई, फलम्मा, तो जब, अताहा, तो आया, यानी मूसा अलैहि सलाम आए, हा, उसके पास, नू दिया, नू दिया मजहूल है, नादा कहते हैं ना पुकारने को, निदा देना, तो नू दिया, पुकारे गए, या मूसा, है मूसा, इन्नी, बेशक मैं, अना रब्बुका, मैं रब्बू का तेरा रब हूं, फखला, खला कहते हैं उतारने को, पस उतार दो, नालई, नाल नाल कहते हैं जूतों को, जूते को, नालईन का नून गिर गया क्योंकि काफ साथ लग गया ना, इसलिए आप देखते हैं कि नालईन मुबारक भी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जूते, तो नालईन और नालई क्या और नून गिरा हुआ, तो अपने जूतों को, इन्नका बेशक आप, बिलवादिल मुकद्दसी, वादिय मुकद्दस में है, तुवा तुवा की। तो यहां तक आज का हमारा सबक है, अल्हम्दुलिल्लाह।